ओम शांति। आप सभी कितने भाग्यशाली हो जो भगवान से मिलन मनाते हो, भगवान को तीसरे नेत्र से देखते हो और उस स्वरूप का सुख लेते हो जिसके लिए भक्ति मार्ग में एक सेकंड का दर्शन हो जाए तो गला काटने को भी तैयार रहते थे। आज ऐसे परम आत्मा से हम आप आत्माएं प्रति सेकंड मिलन मनाती हैं, उसके दिव्य रूप को देखती हैं और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती हैं। हम सब भाग्यशाली हैं भगवान के महावाक्य सुनते हैं और उसी महावाक्य के आधार पर स्वयं का अपना जीवन बनाते हैं और बनाते बनाते महान देवी देवता बन जाते हैं। तो अभी आप सब ने मीठे बाप दादा की मुरली सुनी है कि सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो, खुश रहो और खुशी बांट ते रहो, अर्थात दूसरों को भी खुश करते रहो, क्योंकि देवताएं या देवियां सदा खुश हैं। अपना सबका लक्ष्य है देवी देवता बनना, तो वो सदा खुश हैं तो वो गुण अभी धारण करना है। लेकिन इस समय हम आप आत्माएं देवी देवताओं से भी ऊंचे हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, हीरे तुल्य हैं। तो हमारी खुशी देवी देवताओं से भी ऊंची है, क्योंकि खुशी की तीन स्टेजेस है। एक है हंसना, दूसरा है मुस्कुराना और तीसरा है गदगद होना, जिसको कहते हैं ये तो खुशी में फूला नहीं समाता है। तो तीन स्टेज है, हंसना, मुस्कुराना और गदगद होना। हंसते हैं दुनिया के लोग, हंसते जो जोर से हंसते सोचते हैं वो दुनिया के लोग हैं। आपस में कुछ ऐसी बात हुई, किसी का मजाक किया, कुछ ऐसा हुआ तो जोर से हंस पड़ते। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जोर से हंसना भी एक विकार है, क्योंकि जोर से हंसना, आवाज से हंसना, ये देह भान की निशानी है। तो हंसते दुनिया वाले हैं और मुस्कुराते देवताएं हैं। आप कभी भी देवताओं की मूर्ति देखो, मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। और ब्राह्मण गदगद होते हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। अब तीनों में अंतर क्या है और इसको धारण कैसे करें? क्योंकि हमें बनना है और बाबा ने कहा है तो करना जरूर है। अगर करेंगे तो आज्ञाकारी की लिस्ट में आ जाएंगे और जो आज्ञाकारी बनता है वो आशीर्वाद के पात्र बन जाता है। अगर आप भगवान के इस महावाक्य को प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ अभी से करना शुरू कर देंगे तो भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने के कारण आप बहुत जल्दी इस गुण को धारण कर लेंगे। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद साधारण बात नहीं है। आप मम्मा को देखो, दादियों को देखो, ये अगर आगे गए हैं तो एक ही बात के कारण, बाप के आशीर्वाद के कारण। जो हम आप सब पुरुषार्थ करते हैं और हमारे सामने पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है, यही तन या बीमार होता है या मन डिस्टर्ब होता है, बाबा में लगता नहीं, या धन की कमी आ जाती है, और या तो परिवार में या बिजनेस में या ऑफिस में कलह कलेश हो जाता है। इन चारों समस्याओं में कोई न कोई समस्या प्रबल हो जाती है जिससे हमारा पुरुषार्थ बढ़ नहीं पाता है। इन्हीं समस्याओं में हम उलझ जाते हैं। जैसे आप पुरुषार्थ बढ़ाते हो तो चलो, अगर तन साथ दे रहा है तो दूसरा जो मन है वो पुराने संस्कार मन को बहुत भटकाते, बहुत भटकाते, बाबा में टिकने नहीं देते। तो ये बात ऐसे नहीं कि मम्मा में नहीं थी या दादियों में ये बातें नहीं थी, थी, ये बाबा के शब्द देखो कि जो जितने बड़े महारथी हैं, जितने बड़े उतने ही ज्यादा पापी हैं। क्यों? क्योंकि महारथियों का जो अब हैं, ये पहले भी महान पद के अधिकारी थे, सतयुग त्रेता में तो थे ही, द्वापर कलियुग में भी। इनके एक आर्डर का प्रभाव बहुतों के ऊपर पड़ता था, तो वो हिसाब किताब इनके ऊपर ज्यादा है। आप बाबा की मुरली में सुनते होंगे, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा क्या कहता है, नंबर वन पावन, तो नंबर वन पतित। तो हिसाब किताब इनके पास भी है, संस्कार इनके पास भी है, लेकिन इन्होंने जो इतना जल्दी पुरुषार्थ को आगे बढ़ा लिया, इसका कारण था आज्ञाकारी बनने के कारण बाप का आशीर्वाद। जैसे कि एग्जाम्पल, मम्मा ने ही पुरुषार्थ को बढ़ाया, तो मम्मा के सामने भी ये पुराने संस्कार, विघन परिस्थितियां सब आई, लेकिन बाप के आशीर्वाद के कारण वो संस्कार दब गए, मम्मा के ऊपर हावी नहीं हो पाए। तो संस्कार दब जाने के कारण मम्मा का पुरुषार्थ एक रस हो गया, विघन नहीं डाल सका। क्यों? बाप का आशीर्वाद। आप सब भी नंबर वन पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ही पाठ पक्का कर लो, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का अर्थ ही है जो बाबा ने कहा तुरंत करने लग जाना। आज्ञाकारी का ये अर्थ नहीं है कि आज मुरली सुन के गए हैं और सेंटर पर जाकर एक हफ्ता के बाद अभ्यास करेंगे, वो आज्ञाकारी नहीं है। उसमें बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, आप मान लो थोड़ी आपकी तबीयत खराब है, आप किसी को कहते हो भैया ये दवाई ला करके दे दो, और वो दौड़ के जाता है तुरंत दवाई लाके आपको दे देता है, तो आपके दिल से आशीर्वाद निकलेगा या नहीं? निकलेगा ना। और अगर वो व्यक्ति उस समय दवाई लाके नहीं देता है, दो तीन दिन के बाद पांच छह टैबलेट ला करके देता है, तो क्या आशीर्वाद निकलेगा? आशीर्वाद तभी निकलता है जब जो बाबा के मुंह से निकला और करने लग जाओ। रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, जो मुरली से एक पॉइंट ले लो, और करने लग जाओ। देखो बाबा का आशीर्वाद कितना जल्दी आपको तीव्र पुरुषार्थी बना देगा। तो ये बाप का आशीर्वाद अवश्य लेना ही है। अपने बल पर आप माया पर जीत नहीं पा सकते हो। बाप के आशीर्वाद की जरूरत है और मांगने से नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। करना अर्थात जो मुरली सुना करने लग जाओ, करने लग जाओ। तो अभी बाबा की मुरली सुनी है खुश रहने की, तो करने लग जाओ अभी से। खुशी कोई बाजार में नहीं मिलती है जो खरीद के ले आएंगे, करना पड़ेगा। जब खुद खुशियों से संपन्न होंगे तब दूसरे को दे पाएंगे, नहीं तो छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप देख लो और कुछ नहीं, आप अभी उठ के जाओ और आपकी चेयर पर कोई दूसरा आके बैठ जाए, फिर देखो खुशी कहां चली जाती, एक ही सेकंड में गायब हो जाएगी। उसको उठाने की कोशिश करोगे, क्यों? क्योंकि आत्मा भरपूर नहीं है, अभी उसको चाहिए, आगे बैठना चाहिए, उसकी इच्छा है, अभी से प्राप्ति की इच्छा है। तो जब तक चाहिए तब तक दे नहीं सकता है। जैसे एक छोटा गड्ढा है, कोई बड़ा गड्ढा हो, जब तक वो भरेगा नहीं तब तक बाहर पानी नहीं निकलेगा, जब तक भरेगा नहीं। इस गिलास में जब तक पानी पूरा भर नहीं जाएगा तब तक बाहर निकलेगा नहीं। तो जब तक आपकी आत्मा भरपूर नहीं हो जाएगी तब तक कैसे देंगे, प्रश्न ही नहीं है निकलने का। इसलिए सबसे सुंदर विधि है आज्ञाकारी बनो। ये लिख लो यहां, रोज की मुरली से एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट, और उस पॉइंट पर सारा दिन मनन चिंतन पुरुषार्थ प्रैक्टिस ये करते रहो। आप सोचो अगर एक पॉइंट पर कोई 10-12 घंटा 14 घंटा अटेंशन देता है तो क्या वो पॉइंट स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? बोलो माताएं, आ जाएगी ना। तो एक दिन में एक पॉइंट, तो 30 दिन में 30 पॉइंट, संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, लेकिन ये हम करते नहीं, मन को खाली छोड़ देते, काम नहीं देते हैं मन को। जो बाबा ने कहा है उस प्रमाण मन को होमवर्क नहीं दे रहे। और ये तो आप हम सब जानते हैं कि खाली मन, आगे सब जानते हैं। इसलिए मन को खाली नहीं करो, बाप के बताए हुए श्रीमत अर्थात मुरली के आधार पर मन को होमवर्क दे रखो। कोई विघ्न आता है, नहीं समझ में आता है, अपने सेंटर पर बहनों से पूछो, बड़े भाई बहनों से पूछो। अगर लगन है तो पूछने का मन भी कहेगा, अगर पुरुषार्थ की लगन नहीं है तो पूछने का मन भी नहीं कहेगा। तब तो हर एक में अवगुण दिखाई पड़ेगा। हाँ वैसे हैं लेकिन उनमें वो भी तो है, फिर नहीं कर पाएंगे। तो बता रहे थे तीन प्रकार की खुशी। पहली खुशी जो हंसना है वो अज्ञानी मनुष्यों का है, ब्राह्मणों का नहीं। ब्राह्मण जोर से हंसते नहीं। आप खुद देखो, अगर आप जोर से हंसते हो तो उस समय किस बात से हंसते हो? या तो आपस में मिलते कोई मजाक करते हैं तो हंसते हैं, या कुछ ऐसी चीज देखते हैं तो हंसते हैं। ये देह भान की चीज है। ब्राह्मण माना ही देह भान से मुक्त, अपना सारा ज्ञान आत्मा का है, देह भान का नहीं। पहले दिन जिस दिन आप आश्रम पर आए, सबसे पहले आपको बताया गया आप आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। है पहला शब्द यही या नहीं? आप आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। यहां सारा ज्ञान आत्मा का है। तो आत्मा ब्राह्मण बनी है अभी, लेकिन ब्राह्मणों में पुराने संस्कार भी हैं, इसलिए ब्राह्मणों की पहली स्टेज है मुस्कुराना, सेकंड स्टेज है गदगद होना, मुस्कुराना। अब मुस्कुराता कौन है? मुस्कुराएगा वही जो तीन बातें सदा रखता होगा ध्यान पर। एक, बाबा से रूरिहान करता होगा, और जो ज्ञान गुण शक्तियां मिली हैं उस पर मनन करता होगा। मनन करता होगा, बाबा से रूरियान करता होगा, और तीसरी बात, अपने सोमान में खोया रहता होगा। वो मुस्कुराता है, क्योंकि जब ये देखता है कि ये चीज हमारी है, ये चीज हमारी, इतनी ऊंची चीज है, हमारी है, तो क्या मन मुस्कुराएगा नहीं? आप वैसे भी देखो, आप लोग कभी दादियों से मिले होंगे, बड़े भाई से मिले होंगे, या किसी से, या आपकी आरती बहनी है, जब मिलते होंगे, कहीं भी जाओ, बहुत लोग होंगे, तो जब आरती बहन को देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो हमारी दीदी है। फर्क पड़ जाएगा नहीं? क्योंकि उतने में तो कोई आपको जानता नहीं है, लेकिन वो तो जानते हैं। मुस्कुराहट आ जाएगी। तो जब चीज देखते हैं, आप मनन करते हो कि मैं तो देवता था, हम ही तो सतयुग में थे, हम ही तो त्रेता में थे, हम आत्माएं ही तो परम धाम में बाबा के साथ थी। कितनी चमक रही थी, कितना बाबा से शक्ति मिल रही थी। मनन करते हैं तो उसका प्रभाव चेहरे पर आता है, मन मुस्कुराता है। गीत है ना, किसी ने अपना बना के मुस्कराना सिखा दिया। जब भगवान के बन गए तो मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये मुस्कुराहट तब रहेगी, भगवान का मनन चिंतन तब चलेगा जब आपके सामने कोई प्रकार का विघ्न नहीं होगा तब। लेकिन ब्राह्मण माना ही विघ्न, ब्राह्मण जन्म लिया और युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि 63 जन्म के हिसाब किताब है। तो विघ्न ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन विघ्न मन के ऊपर प्रभाव ना डाले उसकी एक विधि बताई। एक तो बाप का आशीर्वाद, दूसरी बात ड्रामा पर अटल निश्चय। ड्रामा पर अटल निश्चय, हर बात में ड्रामा लगाना, क्लियर करते हैं। और तीसरी बात है प्रभु पर समर्पण होकर रहना, भगवान पर समर्पण होकर रहना। तो पहली बात आशीर्वाद क्लियर किया है, दूसरी बात है ड्रामा। ड्रामा हम सबसे लगता नहीं है, अभी छोटी सी भी घटना हो जाए, छोड़ो एक पेन आपका गायब हो जाए, पेन तो भी देखो कितना संकल्प चल जाता है। आप जा रहे हैं, आपका टिकट गायब हो जाए, देखो क्या हालत होगी, कितना संकल्प चलेगा। क्यों नहीं ड्रामा लगता है? इसका मतलब नहीं कि टिकट को ढूंढना ही नहीं है, ढूंढना है लेकिन परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा की तीन विशेषता है। हम सिर्फ एक रूप से ड्रामा देखते हैं इसलिए ड्रामा लगता नहीं है। ड्रामा की तीन विशेषता है। एक, ड्रामा कल्याणकारी है। दूसरा, ड्रामा न्यायकारी है। तीसरा, ड्रामा एक्यूरेट है। कल्याणकारी है, न्यायकारी है और एक्यूरेट है। ये तीन विशेषता ड्रामा की है। आप सिर्फ ड्रामा लगाते हो, बीती सो बीती, ऐसे बीती सो बीती नहीं होता है। ये तीन बातों को एक साथ देखो। मान लो अभी 2-3 दिन पहले बाबा की मुरली में आया था, आपका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन आखिरकार उसमें कल्याण समाया ही है, कल्याण होगा ही होगा। क्यों? बाप कल्याणकारी, संगम युग का समय कल्याणकारी और आप स्वयं कल्याण का पार्ट बजाने वाले कल्याणकारी आत्मा हो, इसलिए अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। तो ड्रामा कल्याणकारी है, दूसरा न्यायकारी है, थोड़ा क्लियर करते हैं, ड्रामा पक्षपात नहीं करता। चाहे कोई कितना बड़ा महारथी हो, चाहे कोई छोटा सा हो। जैसे ड्रामा में छोटा सा एग्जाम्पल आया, कोरोना, वो छोटा बड़ा देखा उसने, सबको ले लिया ना समान रीति से। ऐसे ही ड्रामा समान रीति से न्यायकारी है। जिसका जैसा कर्म वैसा उसको फल अवश्य मिलेगा। हां, अगर बाबा के बताए हुए श्रीमत प्रमाण बाबा से माफी मांग कर और आगे अटेंशन देकर चल रहे हो तो बाबा क्षमा भी कर देगा। लेकिन बाबा के श्रीमत पर चले तो, नहीं तो कर्म का फल अटूट है, न्यायकारी है। और तीसरा एक्यूरेट है, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। तो ये तीन बातें ध्यान रखो। अब एक उदाहरण आपको बताते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी कैसे है। शायद मैं समझता हूं 10-15 दिन पहले मुरली में आया था, जो रोज मुरली सुनते होंगे उन्होंने सुना होगा, बाबा ने कहा कि आप यहां बाबा से मिलने आए और दिल्ली वापस जा रहे थे, रास्ते में टांग कट गई, कल्याण हुआ। अब बताओ, टांग कट गई, क्या कल्याण हुआ उसका? अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था। अब इसका उदाहरण देता हूं कि कैसे कल्याण है, किस प्रकार से कल्याण है। साकार बाबा के समय जब शुरू में बेगरी पार्ट था, उस समय की बात है, एक बहन टीचर थी, वो कुमारी कन्या ही थी, पढ़ाती थी, लेकिन थोड़ी संपन्न परिवार की थी। तो उसने उस समय बेगरी पार्ट के समय यज्ञ में जो कुछ भी था उसने दे दिया, और वो अलग एक मकान कमरे में किराए पर ले करके रहने लगी, सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और कुछ दिन के बाद वो बहन सुबह उठी योग करने और सोचा लाओ चाय पी ले फिर चल करके योग करते। बहुत पुरानी बात, साकार बाबा के समय की बात। तो वो गए किचन में चाय बनाने, तो छोटा सा किचन था, अकेली थी, उसमें कहीं वेंटिलेटर भी नहीं था। तो जो गैस उस समय रबड़ का पाइप होता था, तो उसने जहां गैस का वो चूल्हा है वो तो बंद कर दिया, लेकिन सिलेंडर से नहीं बंद किया था। तो उस पाइप को रात को चूहे ने काट दिया, तो सारा गैस लीक हो गया, और ना वेंटिलेटर भी नहीं है, बाहर निकलने की कोई मार्जिन नहीं थी गैस की। और जैसे इसने दरवाजा खोला, बांस तो आई लेकिन समझ में नहीं आया, और इसने लाइट जला के जैसे माचिस जलाई, चारों तरफ आग थी, गैस था, जल के मर गई, अब आप सोचो, जिसने यज्ञ में इतना दिया उसकी ऐसी मौत क्यों? क्यों नहीं बाबा ने टच किया कि माचिस नहीं जलाओ? तो जब बाबा को भोग लगाया और संदेशी से पूछा, तो संदेशी के द्वारा बाबा ने बताया कि इस बच्ची ने इतना यज्ञ में दिया था, इसके रिटर्न में इसका बहुत ऊंचा पद है। बाबा को इसको बहुत ऊंचा पद देना ही है, लेकिन इस बच्ची के सिर पर इतना पापों का बोझा था कि ये कितना भी योग करती लेकिन इसका पाप का खाता खत्म नहीं होता। अगर पाप का खाता खत्म नहीं होता तो ऊंचा पद मिलता नहीं। इसलिए इस बच्ची का अब सब खाता खत्म हो गया, अब इसका ऊंचा पद फिक्स है। तो अब देखो, प्रैक्टिकल में उसका जलना कितना उल्टा लग रहा है, लेकिन रिजल्ट कितनी अच्छी। क्योंकि बाबा हमारे आपके साथ तीन काम करता है। एक, बाबा हमारे कर्मों का खाता भी चुकतू कराता है, दूसरा हमें संभालता भी है। सिर्फ खाता ही चुकतू नहीं कराता, संभालता भी है, और तीसरा ऊंच पद भी देता है। क्योंकि बाबा कहता ना, मेरे बच्चे हैं, मेरापन है, तो पहले खाता चुकतू कराता है, हिसाब किताब सबके सामने आते हैं। किसी के पास ज्यादा खाता है तो चुकतू करते करते ऐसी हालत हो जाती है कि अब गिरे की गिरे, अब गए की गए, ऐसी हालत हो जाती है। ऐसे समय पर बाबा मदद दे देता है और फिर वो आत्मा खड़ी हो जाती है। बाबा तीन तरह से मदद देता है, ये भी ख्याल रखना, तीन तरह से मदद देता। एक, कभी स्वयं टच करता है, दूसरा आप रू रिहान में बाबा से पूछते हो, और तीसरा किसी के द्वारा मदद दिला देता है। कभी आपके सामने समस्या आई बहुत ज्यादा और आप बाबा से रू रिहान करते हो, तो कई बार तो बाबा आपको टच करा देता है, कई बार आपकी लाइन क्लियर न होने के कारण टच नहीं होता है। तो फिर बाबा स्वयं मदद दे देता है। कईयों को अनुभव होगा कि बाबा स्वयं आकर के मदद देता है, और कईयों को फिर बाबा किसी के द्वारा मदद दिला देता है और वो आत्मा उठ जाती है। जैसे एक छोटी सी घटना, बॉम्बे की बात है, एक बहन नई नई ज्ञान में चली थी और कुछ ही दिन हुआ होगा, 15-20 दिन, उसके परिवार के कोई बीमार पड़े और बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो बॉम्बे हॉस्पिटल में उसको जब ले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसके ब्रेन में 7-8 ट्यूमर थे, तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो उस बहन ने जिसका रिलेटिव था, तो जिसने कोर्स दिया था, टीचर से पूछा डॉक्टर ऐसा कहता है, तो टीचर ने कहा कि डॉक्टर को बोलो ऑपरेशन करो, जो होना होगा हो जाएगा, वैसे भी मरना है मरना होगा तो ऐसे भी मर जाएंगी। तो ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेस हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद बहुत जोर से उसमें क्या कहते हैं वो ऐसा कोई कीड़ा क्या कुछ आ गया जिससे वो मरने पर आ गई और वो डॉक्टर से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने जवाब दिया हे एक दो दिन के मेहमान हैं, इसे अब आप वापस ले जाओ। फिर उस बहन ने टीचर से पूछा, तो टीचर ने कहा जब एक दो दिन के मेहमान हैं तो उनको हॉस्पिटल में रहने दो, आप भी वहां योग करो, हम सब भी योग करते। वो वहां योग चल रहा था, रात को करीब 12 बजे के बाद कुछ ऐसा टाइम होगा डॉक्टर आता है, और आपने देखा होगा जो पेशेंट की चारपाई होती है उसके वहां सारी दवाइयों की लिस्ट की लगी रहती है, उसी आधार से नर्सेज उनको दवाई देती रहती है। तो उसने देखा, देख करके उस बहन को बोला, एक चिट्ठी लिख के दी कि जाओ ये दवा फार्मेसी से ले आओ। वो दवा लेकर के आई, एक ही खुराक था, और डॉक्टर ने उसको खिला दिया और डॉक्टर फिर चला गया। दूसरे दिन मतलब सवेरे जब डॉक्टर आते हैं तो सबसे पहले राउंड पर जाते हैं, तो जब राउंड पर डॉक्टर गया और जब इसके पास आया तब तक तो सोचा था ये तो चला गया होगा, लेकिन जब जा करके देखा तो 75% ठीक हो गया था। अब डॉक्टर के तो होश उड़ गए, कैसे ठीक हुआ? तो डॉक्टर ने नर्स से पूछा कि आपने कुछ दवाई दिया है? बोला सर जो लिखा हुआ है वही दिया है। तो फिर इससे पूछा कि आपने कुछ दवाई दिया और कुछ इसके अलावा? बोला हाँ मैंने एक गोली दिया था। तो बोला वो कौन सी गोली थी? बोला तो मुझे पता नहीं है, आपने चिटकी दिया था वही मैंने ला करके दे दिया। बोला चिटकी कहाँ है? बोला चिटकी तो आप लेके चले गए थे। अब डॉक्टर इतना परेशान कि जो ओरिजिनल डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया था वो तो आया नहीं था, डॉक्टर कोई दूसरा था, अब बताओ कौन आया होगा? सोचो, बाबा किसी को निमित्त बना दिया, स्वयं तो निराकार है लेकिन किसी में बैठ करके अपना काम करा के चला गया। तो बाबा या तो टच करता है, या तो स्वयं मदद देता है, या किसी के द्वारा करा देता है। इसलिए ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी है। इस बात में पक्के रहो तो आपका संकल्प नहीं चलेगा, कितना बड़ा नुकसान हो रहा हो संकल्प नहीं चलेगा। अभी कुछ समय पहले ही हमारी तबीयत ऐसी थी कि आत्मा शरीर छोड़ के जाने वाली है, ऐसी थी। एक ही संकल्प मेरा बाबा का था और कुछ नहीं। अगर सेवा लेनी है तो ठीक कर दो, नहीं तो आगे ले चलना हो ले चलो, जहां कहीं ले जाना हो। अब वो जाने, मालिक वो है, उसको जैसा करना होगा करेगा, क्या चिंता है। इसलिए निश्चिंत रहो, कल्याणकारी है। शरीर छूट जाता तो भी कल्याण है, आगे कहीं बाबा सेवा लेगा, क्योंकि ब्राह्मणों के जीवन की रिस्पांसिबिलिटी बाबा के ऊपर, भगवान के ऊपर। दुनिया वाले तो कहेंगे हाय मर गया, और ब्राह्मण कहेंगे वाह बाबा के पास गया। कितना अंतर है। वो कहेंगे हाय मर गया, कहेंगे हाय वाह भगवान के पास गया, बाबा के पास गया। इसलिए ब्राह्मणों का कल्याण ही कल्याण है। तो आप दूसरा है, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने में निश्चिंत रहो, और उसमें ड्रामा पहले पक्का रखो, कल्याणकारी है। दूसरा, बाबा पर समर्पण रहो। बाबा एक तन आपका, मैं आत्मा आपकी हूं, जो हूं जैसी हूं आपकी हूं, आप जानो आप जानो आप जानो, ऐसे मन से बाबा को अर्पित करते रहो। देखो बाबा क्या नहीं कर सकता है। जिस बात में आपका कल्याण होगा वही करेगा, आपके सोचने से नहीं करेगा, ये भी ख्याल रखना। हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन बाबा कल्याणकारी होने के कारण वो करेगा जिसमें आपका कल्याण होगा। कई ऐसे हैं, एक बहन थी इधर गुजरात में, सूरत में, उसने, उसको मकान चाहिए था सेंटर के लिए। उसने अव्यक्त बाबा से कहा, बाबा ने कहा हाँ बच्ची मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसने नहीं मिला, फिर बाबा को भोग लगवाया, संदेश में कहा, बाबा ने कहा मिल जाएगा, नहीं मिला। आखिरकार बाबा का खेल, पैसे जब करेंसी का ये हुआ, हजार नोट सब कुछ हुआ, चेंज हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि उसको बाबा के आज बहुत बड़ा सेंटर आज उसको मिला हुआ है। तो हम चाहते कुछ और हैं, लेकिन बाबा वो करता है जिसमें कल्याण है। अभी आज उस सेंटर से बहुत सेवा हो रही है। हम मकान देखते हैं, बाबा सेवा देखता है कि कहां से सेवा अच्छी होगी, कहां से बच्चों का कल्याण ज्यादा होगा, वो बाबा देखता है। त्रिकालदर्शी है। हम सिर्फ एक काल देखते हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी जो बीत रहा है उतर उसी समय, कल का वो भी नहीं जानते। और बाबा त्रिकालदर्शी होने के कारण जिसमें हमारा कल्याण है वही करता है। इसलिए कुछ भी हो रहा है आपके घर में या बिजनेस में या शरीर पर, कुछ भी हो रहा है, अगर श्रीमत प्रमाण चल रहे हो तो कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही होगा। अगर श्रीमत पर नहीं हो तो फिर बाबा जिम्मेदार नहीं, फिर तो आप अपनी मनमत पर कर रहे हो, लेकिन श्रीमत पर चलते रहो। और तीसरा है गदगद होना। गदगद तब होंगे जब हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के खजाने सबका स्वरूप बन जाएंगे। पुरुषार्थ ने स्वरूप बन जाएंगे। बाबा शांति का सागर है तो मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बिल्कुल समान, जब ऐसे समान स्थिति तक पहुंचेंगे तब आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, खुशी में नाचते रहेंगे। ये है ब्राह्मणों की आखिरी स्टेज, जिसको कहा जाए फरिश्ता की स्टेज, बाप समान की स्टेज। तो आपको पहुंचना यहां तक है, गदगद होने की स्टेज पर, लेकिन उसके पहले है आपका मुस्कुराना। मुस्कुराने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, गदगद होने के लिए उपराम स्थिति चाहिए, एकदम उपराम। मेरा ना शरीर है ना मेरा यहां कुछ है, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, मेरा घर मेरी राजधानी, मेरा घर मेरी राजधानी, उपराम। इस उपराम से आप बाबा के समानता की स्थिति ले आएंगे। और मुस्कुराने के लिए जितना अंतर्मुखी हो करके मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, रूर्यान करेंगे, उतना आप मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
Yeah. उदाते रहो सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। I'm not afraid of the dark.